मोगुक नगरी के धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नालियों, मोगुक नगरी का अपना महत्व है। जब जब यहाँ आता हूँ मन प्रसन्नता से भर जाता है। मोगुक शब्द मुकुट शब्द का ही अपभ्रंश है। यहाँ के उच्चारण में मोगुक कहते हैं, मुकुट राज मुकुट इस ब्रह्म देश का राज मुकुट है। केवल इसीलिए नहीं कि यहाँ पर मणि मानक बड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि इन पहाड़ियों की तरंगों में धर्म समाया हुआ है। पहाड़ियां तो दुनिया में बहुत जगह हैं, खूबसूरत भी हैं, सुंदर भी हैं, पर धर्म की तरंगे नहीं हैं। धर्म की तरंगे धर्म देश में ही प्राप्त होती हैं, और ये धर्म देश के राजमुकुट राजमुकुट नगरी तो धर्म की तरंगों से खूब लहलहा रही है। लोगों का बड़ा मंगल होता है। यहाँ रहने वालों को गृहस्थ हैं, काम धंधा करते हैं, करना ही चाहिए, व्यापार करते हैं, करना ही चाहिए, पैसे कमाते हैं, ईमानदारी के साथ परिश्रम के साथ कमाना ही चाहिए, पर उसका सदुपयोग हो ये भी ख्याल रखना चाहिए। और साथ साथ इस भूमि पर रहकर धर्म की कमाई भी करनी चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी कमाई धर्म की कमाई है। धन दौलत की कमाई तो आती है, कभी चली भी जाती है, धर्म की कमाई चली नहीं जाती, कायम रहती है, बढ़ती रहती है, हमारा कल्याण करती रहती है। इसी जीवन में नहीं, आगे के जन्मों में भी बड़ा कल्याण करती है। तो जो यहाँ आकर बसे हैं, चाहे भारत से आके बसे हैं, चाहे नेपाल से आके बसे हैं, उनको दुनियावी धन दौलत की कमाई के साथ साथ ये धर्म की कमाई भी संग्रह करनी चाहिए, जो कि यहीं प्राप्त होती है। खूब समझना चाहिए कि धर्म क्या होता है। अपने यहाँ भारत में, नेपाल में, प्राचीन समय में धर्म का जो अर्थ होता था उसे धीरे धीरे लोगों ने भुला दिया और धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये बौद्ध धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये जैन धर्म है, ये सिख धर्म है, ये कबीर पंथियों का धर्म है, ये दादू पंथियों का धर्म है। कितने टुकड़े कर दिए। प्राचीन भारत में धर्म के ऐसे टुकड़े नहीं होते थे। हिंदू धर्म होगा तो केवल हिंदुओं का होगा, बौद्ध धर्म कहेंगे तो केवल बौद्धों का होगा, जैन धर्म कहेंगे केवल जैनियों का होगा, सिख धर्म कहेंगे केवल सिखों का होगा, पर धर्म तो सबका होगा। धर्म का विभाजन नहीं होता। और पुराने जमाने में भारत में भी, नेपाल में भी धर्म का विभाजन नहीं होता था। धर्म कहते थे नियम को, प्रकृति के नियम को, कुदरत के कानून को, विश्व के विधान को जो सब पर लागू होता है, उसी को नए भी कहते थे। नए माने कानून, विनय। नए को पालन करने वाले नेपाली, नेपाली। पालन करना चाहिए ना, खाली नाम के लिए नेपाली होने से कैसे होगा। सचमुच नए का पालन करना चाहिए। भारत में भी जो धर्म का पालन करते थे वे धार्मिक कहलाते थे। धीरे 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 धर्म की सही बात भूल गए और फिर कोई अपने को हिंदू कहने लगा, कोई बौद्ध कहने लगा, कोई जैन कहने लगा। बात समझ में नहीं आई। धर्म तो स्वभाव को कहते हैं, प्रकृति के नियम को कहते हैं। आज भी कभी कभी धर्म शब्द का इस अर्थ में प्रयोग होता है। जब कोई कहता है कि अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, उसका धर्म है, माने उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, वो स्वयं जलेगी और जो उसके संपर्क में आ गया उसे जलाएगी, ये उसका स्वभाव है। अगर वो जलती भी नहीं और जलाती भी नहीं तो अग्नि नहीं होगी, कुछ और होगा। तो धर्म का अर्थ हुआ स्वभाव। ऐसे ही कहें बर्फ का धर्म है शीतल होना, शीतल करना, उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। अगर शीतल नहीं होती, शीतल नहीं करती तो बर्फ नहीं, कुछ और होगी। ठीक इसी प्रकार पुराने जमाने में धर्म का यही अर्थ होता था, स्वभाव। माने हमने अपने चित्त में क्या धारण किया, जो धारण किया उसका क्या स्वभाव है। हमने क्रोध धारण किया, द्वेष धारण किया, दुर्भावना धारण की, तो उसका स्वभाव है जलाएगी। भीतर ही भीतर सारा शरीर जलने लगेगा, धड़कन बढ़ जाएगी, सारे शरीर में तनाव आ जाएगा, हम व्याकुल हो जाएंगे, उसका स्वभाव है। राग जगाएंगे, ईर्ष्या जगाएंगे, वासना जगाएंगे, अहंकार जगाएंगे, तनाव पैदा होगा, मन की समता खत्म हो जाएगी, मन का संतुलन खत्म हो जाएगा, मन की शांति खत्म हो जाएगी, मन का सुख खत्म हो जाएगा, उसका स्वभाव है, होगा ही। जैसे आग का स्वभाव है जलना, उसका धर्म है, उस पर कोई भी हाथ रख दे तो जलाएगी। आग इस बात को नहीं देखेगी कि मिट पर हाथ रखने वाला आदमी अपने को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है, अपने को ब्राह्मण कहता है कि क्षत्रिय कहता है कि वैश्य कहता है कि शूद्र कहता है, वो काला है कि गोरा है कि पीला है कि भूरा है, नहीं देखेगी। हाथ रखा है जलाएगी ही, उसका स्वभाव है। बर्फ का स्वभाव है शीतल करेगी, उस पर कोई हाथ रख दे शीतल होगा ही, स्वभाव है, धर्म है। ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन विकारों से मुक्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो उसमें मैत्री जागती है, करुणा जागती है, सद्भावना जागती है। और जो मैत्री जागती है, करुणा जागती है, सद्भावना जागती है, उनका क्या स्वभाव है, उनका क्या धर्म है। उनका धर्म है हमें शांति देती है, उसका स्वभाव शांत होना है, शीतल होना है, सुखी होना है, उसका स्वभाव है। अब क्रोध का स्वभाव दुखी बनना है तो कोई जगा के देखे। अपने को हिंदू कहने वाला क्रोध जगाएगा तो भी व्याकुल होगा, अपने को बौद्ध कहने वाला क्रोध जगाएगा तो भी व्याकुल होगा, जैन कहने वाला कि सिख कहने वाला कि मुस्लिम कहने वाला कि ईसाई कहने वाला कि काला कि गोरा कि भूरा कि पीला, कोई जगाए, जो क्रोध जगाएगा उसको दंड मिलेगा, उसी वक्त व्याकुल हो जाएगा। कभी अपने भीतर देखते नहीं ना, तो पता ही नहीं लगता हम कितने व्याकुल हो गए। कोई अनचाही बात हो गई, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमें गाली दे दी, कोई हमारी मनचाही बात होने में अड़चन पैदा कर दी और हमें गुस्सा आया। जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, हमारे मन में यही चलता है, उस आदमी ने हमें गाली दी, उस आदमी ने हमारा अपमान किया, यही मन में चलता है। कभी ये नहीं सोचते कि गुस्सा आया है तो मेरे भीतर क्या होने लगा, देखते ही नहीं। कभी पुराने भारत में, पुराने नेपाल में यही परंपरा थी, जैसे ही मन में कुछ जागे पहले देखो क्या होने लगा, क्रोध जागा है क्या होने लगा, तो देखोगे सारे शरीर में जलन पैदा हो गई, जलने लगा, धड़कन बढ़ गई, तनाव बढ़ गया, व्याकुल हो गया। अरे उसने तो हमारा अपमान किया सो किया, हम गाली निकालते हैं बदला लेने के लिए, हम गाली निकालते हैं उसको दुखी बनाने के लिए, हम क्रोध जगाते हैं उसको दुखी बनाने के लिए, वो तो पीछे दुखी होगा, पहले अपने आप को दुखी बनाने लगे। जैसे ही क्रोध जगाया अपना आप को दुखी बनाने लगे, कभी सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं। ये भारत और नेपाल की पुरानी परंपरा, धर्म को समझो, स्वभाव को समझो, प्रकृति के नियम को समझो। जब जब तुम अपने मन को मैला करते हो तब तब ये प्रकृति, ये कुदरत, ये निसर्ग, ये परमात्मा तुम्हें दंड देता है, तत्काल दंड देता है। तुमने कानून तोड़ा ना, प्रकृति के नियमों का कानून तोड़ा, तुम्हें दंड मिलेगा। तुमने कानून नहीं तोड़ा, उनके नियमों के अनुसार चले, तुम्हें पुरस्कार मिलता है, तुरंत पुरस्कार मिलता है। जिस किसी राज में रहोगे उस राज के अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं, तुम नियमों को तोड़ोगे, कानून को तोड़ोगे, तुम्हें सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। लेकिन वो सजा हो सकता है कि बहुत देर के बाद मिले, तुमने आज कानून तोड़ा और तुम पकड़े गए और फिर केस चला इस कोर्ट से उस कोर्ट में, उस कोर्ट में होते होते 5 बरस भी लग जाए, 7 बरस भी लग जाए और कभी कभी छूट भी जाए। लेकिन जो कुदरत का कानून है, परमात्मा का कानून है, उसमें देर नहीं लगती, देर भी नहीं, अंधेर भी नहीं, तुरंत दंड मिलेगा। जैसे ही कानून तोड़ोगे वैसे ही दंड मिलेगा, व्याकुल हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तुमने मन को मैला किया, उसमें विकार जगाया, राग जगाया कि द्वेष जगाया कि ईर्ष्या जगाया कि अहंकार जगाया कि वासना जगाया कि भय जगाया, कुछ भी जगाया, व्याकुल हो जाओगे, देर नहीं लगेगी। विकार और व्याकुलता एक साथ जागते हैं, देर नहीं लगती। ऐसा नहीं होता अब केस चलेगा, चलो साल भर के बाद दंड मिलेगा कि 2 साल के बाद मिलेगा कि मरने के बाद मिलेगा, अरे यहीं यहीं दंड मिलता है, यहीं नरक भोगने लगते हैं। अपने भीतर के नरक को कभी देखा नहीं, नरक की अग्नि कितनी जल रही है, हम कितने व्याकुल हो रहे हैं, कभी देखा नहीं। ऐसे ही हम कुदरत के कानून के अनुसार अपना जीवन ढाल लेंगे, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन ढाल लेंगे, ये कहो परमात्मा के नियमों के अनुसार अपना जीवन ढाल लेंगे, तो पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा, यही मिलेगा, एक साथ मिलेगा। जैसे ही मन में मैत्री जगी, सद्भावना जगी, करुणा जगी, इतनी शांति, इतना सुख, इतनी शांति जो कभी नहीं देखी, उतनी शांति मिलेगी, तुरंत मिलेगी, देर नहीं होगी। ये स्वर्ग का सुख अपने भीतर, जैसे नरक का दुख अपने भीतर, वैसे स्वर्ग का सुख अपने भीतर। अनुभव करके देखना भूल गए, ये दुर्भाग्य हुआ, न जाने किन जंजालों में पड़ गए, आपसी झगड़े में पड़ गए। हिंदू बौद्धों को गाली निकालते हैं, बौद्ध हिंदुओं को गाली निकालते हैं, हिंदू मुसलमानों को गाली निकालते हैं, मुसलमान हिंदुओं को गाली निकालते हैं, ईसाई गाली निकालते हैं। अरे हुआ क्या, धर्म कोई नहीं समझा, धर्म को धारण कोई नहीं करता, और मैं तुमसे ऊँचा तुम उससे नीचा, मेरा धर्म सबसे ऊँचा तेरा धर्म सबसे नीचा। अरे कहाँ उलझ गए भाई, धर्म तो सब का एक जैसा होता है, कोई भी उसमें भेदभाव नहीं होता। तुमने नियम तोड़ा तो तुम्हें दंड मिलेगा ही, कोई भेदभाव नहीं होता। तुमने धर्म का पालन किया, नियम का पालन किया, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा ही, कोई भेदभाव नहीं होता। ये बात अपनी पुरानी बात, अपने ऋषि मुनियों की बात अपने बुद्धों की बात, अपने अरहंतों की बात सब भूल गए। उसे नहीं भूलना है, उसे जागृत करना है। ना समझी से ऐसा होने लगा। मैं अपनी बात जानता हूँ, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, अच्छी बात हुई। कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, माता पिता भी, सारे परिवार भी बहुत धार्मिक विचार, तो हमें भी विरासत में धर्म की शिक्षा मिली। शील सदाचार का पालन करना चाहिए, मन को निर्मल रखना चाहिए, मन में सद्गुण होने चाहिए, ये बचपन से सीखा। लेकिन साथ साथ ये भी एक बात सीखी कि अपना हिंदू धर्म सबसे ऊंचा है। ये बौद्ध धर्म, अरे बाबा नहीं नहीं, बुद्ध तो बहुत अच्छे हैं, बुद्ध तो हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उनका तो कहना ही क्या, वो तो ईश्वर हुए, उनका अवतार है तो उनको नमस्कार भी करना चाहिए, उनको धूप दीप भी जलाना चाहिए, उनकी पूजा भी करनी चाहिए। पर उनकी शिक्षा, अरे ना बाबा ना, उनकी शिक्षा अपने काम की नहीं। उनका अवतार इसीलिए हुआ कि लोगों को गलत रास्ते भेज कर नरक भेज देवे, वो स्वर्ग में ना चले जाएं, इसलिए अवतार हुआ। बचपन से यही सुनते आए, यही सुनते आए, बौद्ध धर्म हमारे काम का नहीं, हमारे काम का नहीं। 31 वर्ष तक हमारे जीवन में कभी किसी बौद्ध शिक्षा को सुना तक नहीं, किसी बौद्ध भिक्षु की कोई बात नहीं सुनी, बौद्ध धर्म है हमारे काम का नहीं। कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, बौद्ध धर्म है हमारे काम का नहीं। बचपन से यही लेप लगे थे, जानता नहीं था, क्या करें। ऐसे ही समाज में, ऐसे ही परिवार में जन्मे पले, तो यही दृष्टिकोण रहा, यही लेप लगे थे बुद्धि पर। 31 वर्ष की उम्र में हमारा भाग्य जागा। भाग्य जागा, कोई बहुत भयंकर रोग लग गया जिसका कोई इलाज नहीं था, तो हमारे एक मित्र ने कहा, तुम ये विपश्यना साधना कर लो, इससे तेरा रोग दूर हो जाएगा। दुनिया भर में सब जगह इलाज कराता फिरा, बहुत पैसे खर्च किए, बहुत समय खराब किया, लौट कर आया तो कोई इलाज नहीं हुआ, रोग बढ़ता ही गया। ज्यों ज्यों दवा की तो रोग बढ़ता ही चला गया, कोई दवा काम नहीं आई। और ये हमारा मित्र कहता है कि तू विपश्यना कर ले 10 दिन। जी घबराया, अरे भाई हम तो बचपन से यही पढ़ते आए, स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह, भयावह, ये तो पराय धर्म है, ये तो बौद्धों का धर्म है, इसमें नहीं जाना चाहिए। अपने धर्म में प्राण चले जाएं तो चले जाएं, स्वधर्म में निधनं श्रेय, भले मर जाएं, इस सिर दर्द के मारे भले प्राण चले जाएं, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, ऐसा मन को मजबूत किया। हमारे मित्र ने कहा, तू एक बार ये विपश्यना सिखाने वाले गुरु से मिल तो सही, मत जाना, मत करना विपश्यना, पर मिल के तो देख, मिलने में क्या बिगड़ता है तुम्हारा। हमने कहा अच्छी बात, मिल लेंगे। गए उनके घर पर, गवर्नमेंट के ऑफिसर, वो भी बहुत बड़े ऑफिसर, बर्मा पहले स्वाधीन बर्मा के पहले अकाउंटेंट जनरल, इतने बड़े ऑफिसर। घर में गए तो इतनी सादगी से रहते हैं, ये कुर्सियाँ वगैरह भी इस तरह की लकड़ी की, और वो बैंत की, ये बैठने की जगह, इतनी सादगी से, कहीं कोई सजावट नहीं, कुछ नहीं। अच्छा लगा, बैठे बातचीत शुरू की, देखा घर में कोई नौकर चाकर नहीं, खुद ही अपना काम करते हैं, उनकी पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी। इतनी सादगी, बड़े बड़े अफसर होते हैं तो न जाने कितना पैसा कमाते हैं, और यहाँ तो इतनी सादगी से रहते हैं। तो बातचीत शुरू की उनसे, हमने कहा कि महाराज हमको ये माइग्रेन का रोग है, सिर दर्द का बहुत भारी रोग है, और जब जब आता है तब डॉक्टर लोग मोर्फिया देते हैं, अफीम की सुई देते हैं, और कोई इलाज नहीं। दुनिया भर में फिर कर आ गया, सिवाय अफीम की सुई के कोई इलाज नहीं, और अफीम की सुई ऐसी है कि दूसरे दिन फिर उसका असर रहे, उल्टियां आए, जी घबराए, पड़ा रहना पड़े, काम नहीं कर सकें, तो बहुत तकलीफ होती है, और कोई इलाज है नहीं दुनिया में, और कोई पेन किलर नहीं मिला, कोई दवा नहीं मिली, मोर्फिया ही लेनी पड़ती है। धीरे धीरे व्यसन लग जाएगा मोर्फिया का, फिर तो रोज़ लेनी पड़ेगी अफीम, उसके बिना रह नहीं सकेंगे। अरे बहुत घबराहट हुई, महाराज क्या करें, लेकिन कोई इलाज नहीं है। हमारे मित्र ने कहा, आपके पास इलाज है, आप ये विपश्यना सिखाते हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। तो कहा मत आना, हम तुमको नहीं लेंगे। मोर्शिया के को छोड़ करके ये धर्म का इलाज करने आए हो, अपना सिर दर्द का इलाज करने आए हो, हम तुमको नहीं लेंगे। अरे ये तुम्हारे भारत की महान विद्या है, अध्यात्म विद्या है, जन्म मरण के दुखों से बाहर निकालने वाली, धनम मरम के चक्कर से बाहर निकालने वाली, और तू इसको उपयोग करता है अपने सिर दर्द को ठीक करने के लिए, इसका अमूल्यन करता है, डिवल्यूशन करता है, क्या करने लगा? अगर मन को निर्मल करना है, विकारों से मुक्त करना है, तो आओ, दरवाज़ा खुला है। सिर दर्द के लिए आओगे तो दरवाज़ा बंद है तुम्हारे लिए। सुन करके मैं भौचक्का रह गया, ये भी कोई गुरु है? उस समय तक उम्र छोटी होते हुए भी अपने व्यापार में, धंधे में और समाज में बहुत प्रतिष्ठा, उस समय के राजनेताओं से बहुत घनिष्ठता, तो इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई गुरु कहता है तुझे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, जा। साधारण गुरु हो तो कहे आओ 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 आओ, फिर ढोल पीटे, देखो गोविंद का हमारा चेला हो गया, गोविंद का हमारा शिष्य हो गया, कितनी खुशियां मनाए, और ये कहता जाओ मत आओ, हम नहीं लेंगे तुमको, तुम सिरदर्द के लिए आए हो। तो मन में बड़ा आदर भाव जागा, कितना निसंग है, कहीं आसक्ति का नामो निशान नहीं, कहीं अहंकार का नामो निशान नहीं। मुझको ऐसा चेला नहीं चाहिए कि जिसमें खाली नाम हो, हमको नाम नहीं चाहिए। तू धर्म को समझ तब चले आना, मन के विकार निकालने हैं तो चले आओ। मन के विकार निकलेंगे इस साधना से, बात तो बड़ी अच्छी है, मन में तो कितने विकार भरे पड़े, क्रोध भरा हुआ, काम वासना भरी हुई, अहंकार भरा हुआ, न जाने कितने प्रकार के विकार ही विकार, और ये कहते हैं कि उससे विकार निकलेगा, तो अच्छा तो लगा। लेकिन फिर उसे साफ साफ कहा, क्या करें महाराज, आना तो चाहता हूँ, लेकिन आपका तो बौद्ध धर्म है ना, हम तो हिंदू हैं, बड़े कट्टर हिंदू हैं, हम बौद्ध धर्म में कैसे आएँ, ये झिझक है। तो ज़ोर से हंसे, कहा अच्छा तो यहाँ के बर्मा के हिंदुओं का लीडर है, तो एक बात तो बता, तुम्हारे हिंदू धर्म में शील सदाचार का पालन करने में कोई विरोध है क्या? शील सदाचार का पालन करने में क्या विरोध होगा हमारा? किसी धर्म में नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में कैसे होगा? हम भी कहते हैं खूब सदाचार का जीवन जियो, शील का जीवन जियो, इसमें कौन मना करेगा? कोई विरोध नहीं है। हम तुम्हें शील सदाचार का जीवन जीना सिखाएंगे, क्या इतराज है तुम्हें? कोई इतराज नहीं महाराज, पर कैसे तुम शील का पालन करोगे? तुम्हारा मन ही वश में नहीं है। जिसका मन वश में नहीं है वो कैसे शील का पालन करेगा? जानता है कि ये सदाचार का जीवन अच्छा है, करना चाहिए, ये दुराचार का जीवन खराब है, नहीं करना चाहिए, खूब समझता है, लेकिन फिर भी सदाचार का काम नहीं करता, दुराचार का काम करता है, मन वश में नहीं है। हमें ख्याल आया अपने यहाँ महाभारत में, महाभारत में एक कथा है दुर्योधन की, दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। महाराज खूब समझता हूँ धर्म क्या है, सदाचार क्या है, खूब समझता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, उस ओर जाने को मन ही नहीं करता, और खूब समझता हूँ अधर्म क्या है, दुराचार क्या है, खूब समझता हूँ, पर क्या करूँ, उससे निवृत्ति नहीं होती, उससे छुटकारा नहीं होता। क्यों भाई, क्यों नहीं होता? मन वश में नहीं है। तो याद आई महाभारत की बात, हमने कहा हाँ महाराज ये बात तो सही है, जिसका मन वश में नहीं है वो हजार मन से चाहे कि हमको सदाचार का जीवन जीना है, दुराचार से दूर, बेचारा करे क्या, मन का गुलाम है, मन उसको जैसे नचाता है वैसे नाचता है वो, तो दुराचार नहीं करना चाहिए फिर भी करता है, सदाचार करना चाहिए फिर भी नहीं करता। तो हम तुमको मन को वश में करना सिखाएंगे, अच्छी बात है, मन को वश में करना सिखाएंगे, उसको हम लोग बौद्ध धर्म में समाधि कहते हैं। समाधि में तुम्हारे हिंदुओं को, तुमको कोई विरोध है क्या? समाधि में क्या विरोध होगी? हमने कई शास्त्र पढ़े थे, जगह जगह अपने शास्त्रों में ये मुनि गया जंगल में जाकर तपस्या की, खूब समाधि लगाई, वो ऋषि गया जंगल में जाके खूब समाधि लगाई, हम तो गृहस्थ हैं भाई, हमको कहाँ समाधि। और ये कहते हैं समाधि लगाना सिखाएंगे, मन को वश में करना सिखाएंगे, इसमें क्या विरोध है? हमारे हिंदुओं में समाधि लगाने में कोई विरोध नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कैसे समाधि लगाना सीखे, हम तुम्हें समाधि लगाना सिखाएंगे, मन को वश में करना सिखाएंगे। लेकिन फिर कहा, केवल मन को वश में करने से बात बनती नहीं, मन को वश में करना अच्छा है, मन को वश में करने से सदाचार का पालन करोगे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन मन के भीतर गहराइयों में अनेक जन्मों से कितने विकार इकट्ठे किए, कितने विकार इकट्ठे किए, उनका ढेर इकट्ठा है भीतर, खजाना उसका भरा पड़ा है। तो तुम ऊपर ऊपर से अपने मन को शांत कर लोगे समाधि से, अपने मन को वश में भी कर लोगे, निर्मल भी कर लोगे, खूब अच्छा लगेगा समाधि से, लेकिन भीतर जो विकार ही विकार भरे पड़े हैं, न जाने कब ज्वालामुखी की तरह फूटेंगे और फिर तुम वैसे के वैसे हो जाओगे। तो जब तक भीतर का विकार नहीं निकलेगा, ये कोरी समाधि काम नहीं आएगी। हमको झट ख्याल आया, मुनि विश्वामित्र का ख्याल आया, अरे कितनी समाधि लगाई, फिर क्या हुआ? वासना जाग गई और क्या हुआ? मुनि दुर्वासा की बात याद आई, कितनी समाधि लगाई, लेकिन फिर विकार जागा, क्रोध जाग गया, तो क्या हुआ? बात तो ठीक है, समाधि से मन वश में होता है, समाधि से मन निर्मल भी होता है, पर ऊपर ऊपर का मन निर्मल होता है, थोड़ा सा भीतर तक भी निर्मल हो जाता है, पर जड़ों का स्वभाव नहीं निकलता। अंदर मन की जड़ें तो वैसी की वैसी, और वो जब तक नहीं सुधरेंगी तब तक मन नहीं सुधर सकता। तो उसके लिए हम अगला कदम सिखाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रज्ञा। मन में जड़ों तक जो विकार है उसको निकाल के बाहर फेंक देगी, उसको प्रज्ञा कहते हैं। तुम्हारे यहाँ प्रज्ञा में कोई विरोध है? प्रज्ञा में क्या विरोध हो सकता है? उन दिनों मैं बहुत प्रवचन देता था, गीता पर प्रवचन देता था, और गीता में स्थित प्रज्ञ की बात ही उसी पर प्रवचन देता था। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, कैसा होता है, फिर खूब समझाता, स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है, ऐसा होता है, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यति इत्यादि इत्यादि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, ऐसा प्रतिष्ठित होता प्रज्ञा में, बहुत प्रवचन देता था। कभी कभी घर में आके सोचता था, इतने लंबे छोड़े प्रवचन देकर आ गया, मुझ में तो प्रज्ञा का नामो निशान नहीं, कहाँ स्थित प्रज्ञ था? वीतराग वीत द्वेष वीत भय वीत क्रोध, क्रोध ही क्रोध भरा पड़ा, बीता कहाँ? कुछ नहीं बीता, वैसा का वैसा हुआ, तो ये प्रवचन क्यों देता हूँ, आगे से नहीं दूंगा। फिर दबाव आता, नहीं गोयनका जी, अभी तो अपनी रामनवमी आई है, अपनी कृष्णाष्टमी आई है, अपना अमुक त्यौहार आया है, आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा, आपको आगे बोलना चाहिए। अच्छा बाबा, क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे, सबसे बड़ी बात तो अपने गीता की, और गीता में सबसे बड़ी बात स्थित प्रज्ञा की, तो हम स्थित प्रज्ञा की बात करेंगे, लेकिन अपने में तो स्थित प्रज्ञा आई नहीं, इसका दुख भी है। ये कहते हम प्रज्ञा सिखाएंगे, और उससे सारे राग द्वेष क्रोध मोह वासना भय सब निकल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है, आप प्रज्ञा सिखाओगे, हमें कोई विरोध नहीं। तो कहा, देख, शील समाधि प्रज्ञा, इन तीन बात को छोड़ करके और कुछ नहीं सिखाएंगे। आना है तो भले चले आओ, सिर दर्द के आना है तो मत आना। और सिर दर्द की बात समझाई, व्यापारी था, उद्योग की ओर ध्यान था, उद्योग लगाने का, कि तुम चीनी की मिल बैठाना चाहते हो, किस लिए? चीनी पाने के लिए, चीनी पैदा करोगे ना, शुगर पैदा करोगे, इसलिए चीनी की मिल बैठाओगे। उसमें मोलासेस तो आएगा ही, अपने आप आएगा, राब तो उसमें आएगी, राब के लिए थोड़ी चीनी की मिल बैठाओगे, बाई प्रोडक्ट है वो, तो तो तुम अध्यात्म का काम करोगे, चित्त को निर्मल करने का काम करोगे, अरे तेरा माइग्रेन तो अपने आप दूर हो जाएगा। माइग्रेन के लिए काहे विपश्यना करोगे, विपश्यना चित्त को निर्मल करने के लिए करोगे, वो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप होगा। उनकी बात अच्छी लगी, बात तो ठीक है, हमको तो मन को विकारों से मुक्त करना है, और जब तक मन में विकार रहेंगे तब तक तनाव रहेगा, और तनाव रहेगा तो माइग्रेन रहेगी, बात तो ठीक है, पर बौद्ध धर्म तो बौद्ध धर्म है, क्या करें। फिर मन को मजबूत किया कि चलो एक बार आजमा करके तो देखें, हम कभी बौद्ध नहीं बनेंगे, ये प्रतिज्ञा की, हम बौद्ध नहीं बनेंगे, और 10 दिन इनको देखेंगे क्या सिखाते हैं। चला गया, 10 दिन साधना की, पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, एक एक दिन बीतते हैं, अरे इसमें तो कोई खराब बात नहीं, इसमें तो सारी अच्छी बातें हैं। हमको 5 शील दिया गया, हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, कड़वी बात मत बोलो, नशा पता मत, ये तो अपने धर्म की भी बुनियाद है, हमारे यहाँ भी यही बात है, और ये करवाते हैं। इसके लिए मन को वश में करो, तो कैसे वश में करो, देख सांस आ रहा है जा रहा है, सांस आ रहा है जा रहा है, इसी को जानता रहे। अरे हमने समझा ये तो बौद्ध हैं, तो कहेंगे जैसे हमारे यहाँ हम करते थे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसा कोई ना कोई मंत्र करते थे, और ये भी कहेंगे तो अच्छा ओम नमः बुद्धाय ओम नमः बुद्धाय कराएंगे, चलो ओम नमः बुद्धाय कर लेंगे, क्या बिगड़ता है, बौद्ध नहीं होंगे, ओम नमः बुद्धाय कर लेंगे, ये तो कराते ही नहीं, ये तो ओम नमः बुद्धाय नहीं कराते, तो क्या कराते हैं, तो किसी बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठा के उसका ध्यान कराएंगे, आँख बंद करो, बुद्ध की मूर्ति का ध्यान करो, आँख, जैसे हमारे यहाँ हनुमान जी का ध्यान करते हैं कि राम जी का ध्यान करते हैं, काली जी का ध्यान करते हैं, तो आँख बंद करके मूर्ति का ध्यान करते हैं, ये भी ऐसे कराएंगे, ये बुद्ध की मूर्ति का ध्यान कराएंगे, ये तो कुछ नहीं कराते, कोई बुद्ध की मूर्ति का ध्यान नहीं, बुद्ध का नाम नहीं, बुद्ध की मूर्ति का ध्यान नहीं, और कहते हैं खाली सांस को देखो, सांस को देखो, अरे सांस के साथ साथ कहीं बुद्ध का नाम लेने को कहते तो लेके देख लेते, क्या बिगड़ता है, खाली सांस को देखने से क्या मिलेगा, सांस तो आता ही है, हम देखें या न देखें वो तो आता ही है, वो तो जाता ही है, बड़ा अजीब लगा, पर करते 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 लगा ये तो मन को टिकाने का बहुत अच्छा रास्ता है, और ऐसा रास्ता है जिसको सभी अपना सकते हैं। सांस आता है जाता है तो सांस को हिंदू कहेंगे कि सांस को बौद्ध कहेंगे, ये अब के हिंदू सांस आया, अब के बौद्ध सांस आ गया, अब के मुस्लिम सांस आ गया, क्रिश्चियन, ऐसा तो नहीं है ना, सांस तो सांस है और सबका एक सा सांस है, तो देखो भाई सांस को देखने में क्या है। देखते गए मन एकाग्र होने लगा, निर्मल होने लगा, और क्योंकि खाली सांस देख रहे थे और थोड़ी सी जगह मन लगाया था तो मन बड़ा बहुत एकाग्र होते होते सूक्ष्म हो गया, बड़ा तीक्ष्ण हो गया, और इतना संवेदनशील हो गया, इस स्थान पर संवेदना मालूम होने लगी, कोई गर्मी सी, कभी ठंडी सी, कभी धड़कन सी, कभी सिहरन सी, कभी पुलकन सी, कभी भारीपन सा, कभी हल्कापन सा, कहते इसी को देखो, अरे क्या देखें, ये तो होता ही रहता है, इसको क्या देखें, अरे तू देख तो सही, देख दिन भर इसी को देख, जो हो रहा है उसको देख। देखे गया, चौथे दिन होते तो सिर से लेके पांव तक सारे शरीर में कहीं धड़कन होती है, कहीं फड़कन होती है, कहीं भारी है, कहीं हल्का है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, इसी को देख। अरे ये क्या सिखा रहे हैं, इससे क्या होगा, इसको देखने से क्या मिलेगा। करते करते बात समझ में आ गई कि जब जब हमको हमारे शरीर में कोई बहुत दुखद संवेदना मिलती है, जैसे भारीपन है कि दुखाव है कि तनाव है, इस तरह का कुछ होता है तो द्वेष जागता है, नहीं चाहिए मुझे ये अप्रिय संवेदना, नहीं चाहिए। क्रोध जगाने का, द्वेष जगाने का स्वभाव दृढ़ होता है, और जब हमारे भीतर बड़ी सुखद संवेदना चलती है, बड़ा पुलक रोमांच होता है, सुख मालूम होता है, तो मन में राग जगाते हैं, बहुत अच्छा, ऐसा तो और हो, ऐसा तो बार बार हो, तो ये राग जगाते हैं, ये द्वेष जगाते हैं, ये शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के कारण जगाते हैं। और यहाँ सिखाया जा रहा है कि शरीर में चाहे जैसी संवेदना जगे, तो द्वेष मत जगा लेना, क्रोध मत जगा लेना, तो राग मत जगा लेना, आसक्ति मत जगा लेना। बस समझते रहना कि जो जागा है वो अनंत काल तक रहने वाला नहीं है, वो स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, नित्य नहीं है। उत्पन्न हुआ है, नष्ट होने के लिए हुआ है। उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये इसका स्वभाव है। दुखद से दुखद अनुभूति हो तो भी उत्पन्न होती है, देर सवेर समाप्त हो जाती है। उत्पन्न होती है, देर सवेर समाप्त हो जाती है। और सुखद से सुखद अनुभूति हो तो भी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, तरंगों की तरह उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। स्वभाव तो वही है। अरे जो इतनी अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, उसको क्या अच्छा माने, उसको क्या बुरा माने। उसको अच्छा मानकर उसके प्रति राग जगाते हैं, आसक्ति जगाते हैं, तो खत्म होने वाली है। जब खत्म हो जाती है तो बड़ा दुख होता है। अरे इतना आनंद आ रहा था ध्यान करने में, इतना आनंद आ रहा था, अब तो आनंद नहीं आता, तो दुखी हुए ना, क्योंकि आसक्ति पैदा की उसके साथ। और उसी को समझते, ये तो अनित्य है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, क्या राग जगाएं, क्या आसक्ति जगाएं, तो दुखी नहीं होंगे, दुख के बाहर निकल जाएंगे, राग के बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही दुखद संवेदना आई, भारीपन आया, तनाव आया, दुखाव आया, बड़ा दुख होता है, तो बड़ा द्वेष जागता है। और अब देखेंगे, अच्छा ये तनाव आया है, दुखाव आया है, हमेशा रहने वाला नहीं है, देखते हैं कितनी देर रहता है। देर सवेर समाप्त हो जाता है। अरे जो उत्पन्न होकर नष्ट होता है, देर सवेर जब भी खत्म होता है, उसके प्रति क्या द्वेष करें रे। द्वेष करते हम खुद व्याकुल होंगे, हमने अपना नुकसान करना शुरू कर दिया। उसको देखेंगे, तू भी अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, सदा रहने वाला नहीं है। यूँ देखते देखते वो चला गया और हमने द्वेष नहीं जगाया, हमने राग नहीं जगाया, हमने द्वेष नहीं जगाया, तो हमने विकार नहीं जगाया। हम दुखों के बाहर निकलने लगे, हमारा मन निर्मल होने लगा, निर्मल होने लगा। अरे ये तो बहुत अच्छी विद्या है, कोई भी कर सकता है। हिंदू करेगा जीवन भर, भले हिंदू ही रहे, क्रिश्चियन करेगा क्रिश्चियन रहे, मुस्लिम रहे करेगा मुस्लिम रहे, बौद्ध करेगा बौद्ध रहे, कोई करे, आदमी आदमी है। इन शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते विकार जगाता है, कभी राग जगाता है, कभी द्वेष जगाता है, अपने मन को व्याकुल करता है। अब अपना स्वभाव बदलता है, राग नहीं जगाता, द्वेष नहीं जगाता। तो प्रज्ञा की बात समझ में आई, वीतराग भय क्रोधय स्थित धीर मुनि उच्यते। वीतराग बनो, राग मत जगने दो, खत्म करो राग को, द्वेष मत जगने दो, खत्म करो द्वेष को, भय को खत्म करो, क्रोध को खत्म करो। ये स्थित प्रज्ञता। वहाँ तो हम केवल लेक्चर देते थे, यहाँ तो करना सिखाते हैं। अरे बाबा काम की बात हुई ना, बड़े काम की बात हुई। समझते समझते बात समझ में आई, दस ही दिन में कहाँ माइग्रेन गई, कहाँ मोर्फिया गया, वो तो गया सो गया। बड़ा क्रोधी स्वभाव था, कैसे क्रोध कम होने लगा, कम होने लगा। बड़ा द्वेषी स्वभाव था, कैसे द्वेष कम होने लगा, कम होने लगा। ईर्ष्या कम होने लगी, अहंकार कम होने लगी, वासना कम होने लगी, जीवन ही बदल गया, बहुत बड़ा कल्याण हो गया। अरे ये तो हमारा ही धर्म है ना। कोई हिंदू बोले तो कि हमारा धर्म नहीं है सदाचार का पालन करना, कोई कहे कि हमारा धर्म नहीं है। मैं सुनता हूँ यहाँ पर कि हमारे बहुत से हिंदू भाई घबराते हैं, ये तो बौद्ध धर्म है, हम कैसे जाएंगे, हम बौद्ध हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नरक जाना पड़ेगा, हम कैसे जाएंगे, स्वधर्म ही निधन से ही है। हम भी ऐसा करते थे, और जब देखा अरे ये तो हमारा ही धर्म है। पराय धर्म क्या है, सदाचार का पालन करना हमारा धर्म है कि नहीं, हिंदुओं का धर्म है कि नहीं। कोई हिंदू ऐसा होगा कहेगा कि दुराचार का पालन करो, सदाचार का मत पालन करो, ऐसा कोई कहेगा। अरे सदाचार का ही पालन करना है, और उसके लिए मन को वश में करना है, और मन को वश में करने के लिए भी कहीं बुद्ध का नाम नहीं, कहीं बुद्ध की मूर्ति नहीं, कहीं बुद्ध की आकृति नहीं, केवल सांस को देखो, सांस को देखो, देखते देखते मन वश में होने लगा। मन को निर्मल करो, मन को निर्मल करने में भी कोई मंत्र नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, बस क्या हो रहा है, संवेदना जाग रही है, मन में विकार जाग रहा है, संवेदना जाग रही है, मन में विकार जाग रहा है, उसको देख रहे हैं। तो होते 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 विकार कम होने लगे, निकल गए, छुटकारा हो गया। अरे इसमें क्या विरोध होगा, क्यों विरोध होगा। और जैसे जैसे मन निर्मल होता गया, अपने आप मन में मैत्री जागती है,
सबका मंगल हो। अरे ये ऐसी कल्याणकारी विद्या मुझे मिली जिसमें मेरा कल्याण हुआ, अनेक लोगों का कल्याण होना चाहिए, भूल गए। हमारे देश के लोग इस कल्याणकारी विद्या को भूल गए। जो देश में केवल धर्म चलता था उसकी जगह हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, धर्म कहीं चला गया। जहाँ केवल नए चलता था वहाँ नए का पालन करने के बजाय अब हिंदू धर्म का पालन करेंगे, बौद्ध धर्म का पालन करेंगे, जैन धर्म का पालन करेंगे। क्या हो गया? धर्म का पालन करना है, उसको तो भूल गए। और धर्म क्या है? सदाचार का जीवन जी रहे हैं तो धर्म है। समाधि द्वारा मन को वश में कर रहे हैं तो धर्म है। प्रज्ञा द्वारा चित्त को निर्मल कर रहे हैं तो धर्म है। यही कर रहे हैं ना? मन में मैत्री जगाते हैं, करुणा जगाते हैं, सद्भावना जगाते हैं, भाईचारा जगता है, सब अपने से लगते हैं, कोई पराया लगता नहीं। अरे सब अपने हैं ना, तो किसी को दुखी बनाने को कैसे जी चाहेगा? किसी को दुखी बनाएगा ही नहीं। अपने परिवार के लोग हैं, सारा संसार अपने परिवार का लोग है, किसी को कैसे दुखी बनाएं? हम ऐसा कोई काम कैसे करें जैसे करने से दूसरों का दुख होता हो, दूसरे व्याकुल होते हों, दूसरों को पीड़ा पहुंचती हो, ऐसा काम कैसे करें? नहीं करेंगे। ये विपश्यना करते करते एक बात समझ में और आने लगी कि जब जब हम कोई काम वाणी से या शरीर से ऐसा काम करते हैं जिससे अन्य लोगों की हानि होती है, अन्य लोगों को दुख पहुंचता है, अन्य लोगों की सुख शांति पहुंचती है, तो तब तक नहीं कर सकते जब तक पहले अपनी हानि न कर लें। पहले तो ये बात समझ में नहीं आई थी, कभी सुनी भी नहीं थी, कभी विपश्यना में से गुजरे तो समझ में आई। हम किसी की हत्या कैसे करेंगे? कभी सोचा ही नहीं। हत्या कैसे करेंगे किसी की? मन में बहुत क्रोध जगाना पड़ेगा, द्वेष जगाना पड़ेगा, दुर्भावना जगानी पड़ेगी, दुश्मनी जगानी पड़ेगी, तब किसी की हत्या करेंगे। हंसते मुस्कराते हुए थोड़ी किसी की हत्या होती है, प्यार करते हुए किसी की हत्या थोड़ी होती है, क्रोध जगाने से होती है, द्वेष जगाने से होती है। और विपश्यना करने से मालूम हुआ, जैसे ही क्रोध जगाया कि सारे शरीर में जलन पैदा हो गई, जलने लगा, धड़कन बढ़ गई, हम व्याकुल हो गए। अरे उसकी तो हत्या पीछे करेंगे, अपनी हत्या पहले होने लगे, हमारी सुख शांति की हत्या होने लगे, हम व्याकुल हो गए। तो अपना बुरा पहले करते हैं फिर दूसरे का बुरा। अपना बुरा किए बिना किसी दूसरे का बुरा कर नहीं सकते। कोई पराई वस्तु को चोरी करें तो कैसे करेंगे? मन में लोभ जगाना पड़ेगा, लालच जगाना पड़ेगा, तब किसी वस्तु को चुराएंगे, नहीं कैसे चुराएंगे? और विपश्यना करेंगे तो देखेंगे जैसे ही लोभ जागा कि लालच दागा, मन की शांति खत्म, मन का सुख खत्म, मन की समता खत्म, मन का संतुलन खत्म, व्याकुल हो गए। अंदर ही अंदर व्याकुलता है, ऊपर से नहीं मालूम होता। ऊपर से तो जो वस्तु चुरानी है वही मन में आती है, इसको चुराना है, इसको चुराना है, उसका लोभ जागता है। भीतर क्या हो रहा है कभी देखा ही नहीं ना। अब देखा तो पता लगा, अरे हम अपनी हानि कर रहे हैं, उसकी हानि तो पीछे होगी। जिसकी वस्तु चुराएंगे उस बेचारे की हानि होगी, वो व्याकुल होगा, पीछे होगा। पहले अपनी हानि करने लगे, अरे क्या करने लगा मैं, अपनी हानि करने लगा। कोई व्यभिचार करे कैसे करेगा? मन में बहुत वासना जगाएगा तब न व्यभिचार करेगा। और गहरी वासना जागी के भीतर देखा, अरे अशांत हो गया, व्याकुल हो गया, समता खत्म हो गई, संतुलन खत्म हो गया, ये मैं क्या करने लगा। वासना जगते ही होश जागेगा, ये मैं क्या करने लगा, अपनी हानि करने लगा, तो कैसे दुष्कर्म करेगा? कर ही नहीं सकता। किसी को झूठ बोल के ठगेगा तो कोई ना कोई विकार जगाएगा, तब ठगेगा। कड़वी बात बोलेगा तो विकार जगाएगा, तब कड़वी बात बोलेगा। जो भी दुष्कर्म करे, वाणी से करे कि शरीर से करे, पहले मन से दुष्कर्म होता है, पहले मन में विकार जगाते हैं। ये बात विपश्यना करने वाले को जल्दी समझ में आने लगती है। और जब विकार जगाते हैं तो कुदरत हमें दंड देती है, प्रकृति हमें दंड देती है, या यूं कहो परमात्मा हमें दंड देता है, तुरंत दंड देता है, हम व्याकुल हो जाते हैं। तो ऐसा काम क्यों करें जैसे हम भी व्याकुल हो जाएं, औरों को भी व्याकुल करें, हम भी दुखी हो जाएं, औरों को भी दुखी करें? ये उपदेशों की बात नहीं रह गई, अब अनुभव से जानेंगे। काम करते करते अरे अरे मैं क्या करने लगा, अरे मैं क्या करने लगा, अनुभव से।
धर्म को अनुभव से जानना होता है। प्रवचन तो ठीक है, सुनते हैं, अच्छा लगता है, उसका थोड़ा सा लाभ भी होता है। लाभ इतना ही होता है कि धर्म समझ में आया तो थोड़ी प्रेरणा जागी, ये धर्म तो पालन करना ही चाहिए। बस लाभ तो पालन करने से होगा, खाली सुन लिया बहुत अच्छा है, ये तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन किया नहीं, किया नहीं तो क्या हुआ। रसगुल्ला बहुत मीठा है, हमारे गुरु महाराज ने कहा ना रसगुल्ला बहुत मीठा है, तो एक प्रश्न उठेगा क्यों मीठा है, तो पूछेंगे क्यों महाराज क्यों मीठा है, आप कहते हैं इसलिए क्यों मान लें क्यों मीठा है, अरे इसमें चीनी पड़ी है इसलिए मीठा। आप समझ में आ गया कि इसमें चीनी पड़ी है ना इसलिए मीठा है। अब दुनिया भर को बोलते फिरेंगे हमारे गुरु महाराज कहते हैं रसगुल्ला मीठा है और इसलिए मीठा है कि इसमें चीनी पड़ी है। तुझे क्या मालूम है, तूने चक्के देखा, चक्के तूने देखा ना, चक्के नहीं देखा और दुनिया भर की बात करता है रसगुल्ला मीठा है, ये रसगुल्ला मीठा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है रसगुल्ला मीठा है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं रसगुल्ला मीठा है तो हम भी कहते हैं रसगुल्ला मीठा है। तूने भी नहीं चखा, तुम्हारे गुरु महाराज ने नहीं चखा, तुम्हारे शास्त्र लिखने वालों ने भी नहीं चखा, क्या कर रहे हैं, किस अंधेरे में पड़ गए। धर्म के नाम पर अंधेरा ही अंधेरा, अनुभव पर नहीं उतारेंगे और बातें करेंगे बड़ी बड़ी धर्म की। हमारे यहाँ पुराने जमाने में कहते थे धारेति इति धर्म, धर्म उसी को कहते हैं जो धारण किया जाए, जो धारण नहीं किया वो धर्म कैसे हुआ, वो तो बात हुई, कोरी बातें हुई, शास्त्र की बातें हुई, प्रवचन की बातें हुई, बहस करने की बातें हुई, तर्क करने की बातें हुई, झगड़े करने की बातें हुई, बातें ही बातें हुई। चक्के तो नहीं देखा ना, धर्म धारण करे तो चक्के देखे तो कल्याण हो। ये बात 10 दिन का शिविर करने के बाद समझ में आई कि अरे कैसे पागलपन में हमने 31 वर्ष बिताए, जीवन के 31 वर्ष, इतने कीमती वर्ष। मनुष्य जीवन बड़ा कीमती होता है, बहुत कोई पुण्य करता है तो मनुष्य का जीवन मिलता है, और वो इसलिए मिलता है कि वो अंतर्मुखी होके विकारों को निकाल करके मुक्ति प्राप्त कर ले, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा ले। ये काम पशु नहीं कर सकता, ये काम पक्षी नहीं कर सकते, ये काम सरीसृप नहीं कर सकते, ये काम कोई प्रेत प्राणी नहीं कर सकता। प्रकृति ने मनुष्य को यह शक्ति दी है कि वो अंतर्मुखी होकर के अपने विकारों को निकालते ही निकालते मुक्त हो जाएगा, अब जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, केवल मनुष्य कर सकता है। इसीलिए कहा मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल जीवन, बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े पुण्य से मिलता है, और हमने 31 वर्ष ऐसे ही खो दिए, अपने विकार निकालने का काम ही नहीं किया, अपने को धोखे में रखा। आप मिला, रास्ता मिला तो 1-10 दिन में सारे विकार निकल गए, ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। 10 दिन में विकार निकालने का रास्ता मिल गया, एक तरीका मिल गया, इस तरह से करते करते कम होते 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 निकल जाए, सारे निकल जाएंगे, छुटकारा हो जाएगा। बस धर्म आ गया, धर्म का जीवन जीना आ गया। अब अपने आप को चाहे जिस नाम से पुकारे ना, हिंदू अपने को हिंदू कहता रहे, बौद्ध अपने को बौद्ध कहता रहे, जैन अपने को जैन कहता रहे, मुस्लिम मुस्लिम कहता रहे, ईसाई ईसाई कहता रहे, अच्छा आदमी बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए। धर्म तो हमें अच्छा आदमी बनाने के लिए है, अच्छा इंसान बनाने के लिए है, ताकि हम भी सुख शांति का जीवन जिए, औरों के लिए भी ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें और लोग भी सुख शांति का जीवन जी सके। धर्म तो इसीलिए होता है, और हमने धर्म को केवल कर्मकांड बना लिया, केवल बुद्धि विलास बना लिया, केवल वाणी विलास बना लिया। तो आज की सभा में भी आए हो तो जो कुछ सुना है वो केवल वाणी विलास बन के नहीं रह जाए, बुद्धि विलास बन के नहीं रह जाए, उसे धारण करना है, और धारण करना है तो अपने जीवन के 10 दिन देने ही होंगे, तब ये विद्या सीख पाओगे, और सीखोगे तो कल्याण होना शुरू हो जाएगा। सारी दुनिया में फैल गई पिछले 32-33 वर्षों में, सारी दुनिया में फैल गई। दुनिया में कोई ऐसा संप्रदाय नहीं, कोई ऐसी धार्मिक परंपरा नहीं जिसके अनुयायी विपश्यना के शिविर में न आते हों, कोई नहीं। हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सब आते हैं, क्योंकि सब अपने मन को निर्मल करना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। हिंदू हिंदू ही कहता रहे अपने आप को, मुस्लिम मुस्लिम कहता रहे, क्या फर्क पड़ा, अच्छा आदमी बन गया, नेक इंसान बन गया, अपना ही भला हो गया, औरों का ही भला करता है, बुरा नहीं करता, किसी को हानि नहीं पहुंचाता, अच्छा जीवन जीने लगा, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया, तो सब लोग इसमें आने के लिए आते रहे, कोई का विरोध नहीं। शुरू शुरू में विरोध होता, जैसे मुझे विरोध रहा, अरे बाबा ये तो बौद्ध धर्म है, ये तो बौद्ध धर्म है, हम कैसे जाएं इसमें, तो बौद्ध धर्म बौद्ध हो जाएंगे, हम बौद्ध हो जाएंगे। गया इसमें से तो पता लगा, अरे बाबा ये तो धर्म है। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो 15,000 पृष्ठों में छपी हुई है, अभी अपने यहाँ उसको सीडी रोम में डाला, और उसका फिर भाष्य है, टीका है, वो 35,000, कोई 50,000 पृष्ठों का साहित्य है भगवान बुद्ध का, उसमें कहीं बौद्ध शब्द नहीं है। अपनी शिक्षा को कहीं उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं कहा, और अपने जो अनुयायी हैं उनको कभी बौद्ध नहीं कहा। सारे के सारे साहित्य में 50,000 पृष्ठों का साहित्य थोड़ा नहीं होता, और उसमें कहीं बौद्ध शब्द नहीं। जो शिक्षा दी उसको कहा धम्म, धर्म है, और जो फॉलो करने वाले हैं उनको कहा धार्मिक हैं, धम्मी को धम्मी, धम्मचारी धम्म विहारी, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। और आगे जाके 500 वर्ष तक, उसके बाद अशोक हुआ 300 वर्ष तक, उसके जितने शिलालेख हैं कहीं बौद्ध शब्द नहीं, धम्म धम्म धम्मचारी धम्म विहारी। अरे अपने यहाँ भारत में पहले धर्म ही धर्म होता था, बौद्ध धर्म कहाँ, हिंदू धर्म कहाँ। हिंदू शब्द आया ही पिछले 1000 वर्ष के पहले, 1000-1200 वर्ष के पहले, इसके पहले कोई हिंदू शब्द ही नहीं था। किसी शास्त्र में देखो कहीं हिंदू शब्द ढूंढे नहीं मिलेगा, था ही नहीं तो कहाँ से आएगा। ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को बाहर के लोग जो आए उसको सै को हिंदू बोलने लगे। अभी भी भारत में हम राजस्थान के रहने वाले, जो ईस्टर्न राजस्थान है वहाँ के लोग है बोलेंगे और सै बोलेंगे, और पश्चिम के राजस्थान वाले उसी को है बोलेंगे, सासू जी ससुरा जी, और वहाँ कहेंगे हाऊ जी हूरा जी, सै को है कहेंगे। यहाँ सांप कहेंगे वहाँ हाँप कहेंगे, सै को है कहेंगे। तो सिंध तक जाते जाते है हो गया, तो सिंध नदी सिंधु नदी हिंदू नदी हो गई। तो बाहर के लोग आए, इस नदी के आगे रहने वाले सब हिंदू हैं, ठीक है हिंदू है, क्या हुआ क्या बुरा, इस देश के रहने वाले लोग हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म कहाँ से आ गया। जो बुद्ध की शिक्षा को मानने वाले हैं वो धार्मिक हैं, ये बौद्ध धर्म कहाँ से आ गया। जो भगवान महावीर की शिक्षा को मानने वाले हैं वो जैनी कहाँ से हो गए, वो अहिंसक हैं, वो सदाचारी हैं, ऐसा कह सकते हैं, धार्मिक है कह सकते हैं, जैनी कहाँ से हो गए। ये सारे शब्द बाद में आए, कहीं नामो निशान नहीं था, आए आए कोई बुरी बात नहीं है, अपने को हिंदू कहने में कोई बुरी बात नहीं, बौद्ध कहने में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसको लेकर लड़ने लगे, इसको लेकर के हम तो बहुत ऊंचे हैं, हम तो बौद्ध हैं तुम लोग हिंदू हो, हम तो हिंदू हैं तुम लोग बौद्ध हो, हम तो मुसलमान हैं तुम लोग काफिर हो, ये पागलपन जो आया उससे धर्म नष्ट हुआ। पागलपन नहीं आए, अपने आप को चाहे जिस नाम से पुकारो, नाम में क्या पड़ा है, चाहे सो नाम रखो ना, काम इम्पोर्टेंट है, काम कैसा कर रहे हो, कर्म कैसा है तुम्हारा, कर्म तुम्हारा धर्ममय है तो सुखी हो जाओगे, कर्म तुम्हारा अधर्ममय है तो दुखी हो जाओगे। तो अपने को सुखी बनाना है, शांत बनाना है, मुक्त करना है, विकारों से मुक्त करना है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना है। तो विकार रहेंगे तो जन्म मरण का चक्कर चलेगा ही, हो नहीं सकता कि मन में विकार भी हो और फिर पुनर्जन्म ना हो। पुनर्जन्म होगा विकारों का होगा, और क्या पुनर्जन्म होता है। विकार खत्म हो गए, अपने आप जन्म खत्म हो गया, छुटकारा हो गया, मुक्त हो गया, हमेशा के लिए मुक्त हो गया। अरे इतनी बड़ी विद्या अपने भारत की, तो यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं भारत से आए हुए, नेपाल से आए हुए, उनको खूब समझना चाहिए, हमें धर्म का पालन करना है। हम अपने देवी देवताओं से दूर नहीं भागते। भगवान राम के क्या गुण हैं उनको याद करेंगे, अरे इतने गुणवान राम, बाप ने कहा तुझे जंगल जाना होगा 14 वर्ष तक, हाथ जोड़ के कहता हाँ महाराज मैं जंगल जाऊंगा। सारी जनता उसके साथ है, विद्रोह कर सकता है ना, मेरा हक है, क्यों जंगल जाऊंगा, भरत को क्यों राज मिलेगा, मैं राज लूंगा। नहीं कहा ना ऐसे, बाप की आज्ञा मानता है ना, भाई के प्रति प्यार है ना, अरे मेरा भाई राज करे, हमारा क्या है, हम रहेंगे 14 वर्ष जंगल में, क्या बिगड़ता हमारा, इतना प्यार। और इधर भाई को मालूम होता भरत को कि अरे हमारे बड़े भाई को जंगल भेज दिया, वो पीछे पीछे भागता है, आकर के कहता है ना बाबा ना, राज तो तुम्हारा है, तुम आकर के रहो, तुम राज करो। दो भाई आपस में लड़ते हैं, तू राज कर, वो कहता तू राज कर, दुनिया में मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं। दो भाई आपस में इसलिए तो लड़ती हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, तू भोग, ये तेरा है। अरे इतना ऊंचा आदर्श जिस राम का, उस राम के बताए हुए रास्ते पर चलें तो अच्छी बात है ना, बुरी बात क्या है। लेकिन चलेंगे नहीं, केवल कहेंगे हम तो राम भगत हैं, तो राम भी क्या करे बेचारा, क्या होगा उससे, लाभ क्या हुआ। ऐसे ही कोई देवी हो, देवता हो, कोई भी जो भी है, उसमें कोई गुण है इसलिए देवी है, इसलिए देवता है, उनके गुणों को याद करें और वो गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। जीवन में तब आएंगे तब कि हमारा मन वश में होगा, जीवन में तब आएंगे जबकि मन हमारा निर्मल होगा। तो इसके लिए विपश्यना करेंगे, 10 दिन विपश्यना करके मन को वश में कर लेंगे, विपश्यना करके अपने मन को निर्मल करने का रास्ता ढूंढ लेंगे, निर्मल करने लगेंगे, फिर अपने आप सद्गुण आएंगे, दुर्गुण निकलते जाएंगे, सद्गुण आते चले जाएंगे। फिर इसके भगत हैं कि उसके भगत है, क्या फर्क पड़ा, किसी के भगत हो ना, जिसके भगत है उसके गुण हमारे जीवन में आ रहे हैं, हम इसके भक्त हैं इसके गुण हमारे जीवन में आ रहे हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अच्छे रास्ते हुए जाते देख करके खुश होगा। कोई माता पिता ऐसा हो सकता है कि बच्चा बुरे रास्ते जाता है, खराब ही खराब काम करता है, लेकिन सुबह सुबह उठ करके हाथ जोड़ के कहता, बापू बापू जी आपका मुंह तो कमल जैसा, आपके हाथ तो कमल जैसे, क्या करेगा, चांटा मारेगा उठा के, मूर्ख कहेगा मैं कहता हूँ वो काम तो करता नहीं और बड़ाई करता है खाली मेरी, उससे क्या मिलेगा। अरे कोई साधारण बाप अपने बच्चे को खाली बड़ाई करने से खुश नहीं होता। तो हम जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं, जिसको सर्वेश्वर कहते हैं, जिसको सर्वज्ञ कहते हैं, जिसको सर्वव्यापी कहते हैं, उसको उल्लू बनाना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, काम तो बुरा ही बुरा करेंगे लेकिन आपकी प्रार्थना करके आपको खुश कर लेंगे, आपको बड़ाई करके आपको खुश कर लेंगे। भटक गए भाई, होश में आओ, बहुत सदियां बिताई इस भटकन में। अब भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोग आने लगे, जो अपने आप को हिंदुओं के लीडर कहते हैं वो शिविरों में आते हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद का प्रेसिडेंट अभी शिविर में बैठ कर गया, उसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघपति, संघ संचालक वो बैठ के गए, सारे लोग जो भी, क्योंकि खूब समझने लगे ये तो अपना धर्म है, ये तो धर्म है, सबका धर्म है, ये तो सबका धर्म है, इसमें हिंदू और बौद्ध की और जैन की ईसाई की क्या बात पड़ी है। तो भाई यहाँ के रहने वाले, जब मैं सुनता हूँ कि कुछ भाई इसलिए नहीं आते कि हम तो हिंदू हैं और ये तो बौद्ध धर्म है, हम कैसे जाएं, तो हमको हमारी बात याद आती है, हमने भी इस पागलपन में कितना समय बिताया और जब मिल गया तो कितना कल्याण हुआ, हमारा भी हुआ, औरों का भी हुआ, सारे विश्व का हो रहा है। देखो कितने खुश होने की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। भारत और नेपाल आर्यों की भूमि होती थी और ये सारे विश्व में विश्वगुरु कहलाते थे, फिर भूल भाल गए कहाँ के विश्वगुरु। अब अपने आप को फिर इसमें पकाना है और फिर विश्वगुरु बनना है सही माने में। पहले अपने गुरु आप बनो, अपने आप को सुधारो, खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा। आज के सभा में जो जो आए हैं वो आज के इस प्रवचन को केवल बुद्धि विलास बना के न रह जाएं, केवल वाणी विलास बना के न रह जाएं, इससे प्रेरणा प्राप्त करें और फिर जीवन में धर्म धारण करने के लिए अभ्यास करें। 10 दिनों तक अपना समय दें अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, और कौन जाने अपने जरियों से औरों के भी मुक्ति के लिए, औरों के भले के लिए। जो जो आए हैं सबका मंगल हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, स्वस्ति हो, मुक्ति हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलं।